एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। एमएल स्टेडमैन का पहला उपन्यास द लाइट बिटवीन ओशंस, ये 2012 में आई थी और आते ही मतलब छा गई थी।
हाँ बिल्कुल, और बहुत ही इमोशनल, दिल को छू लेने वाली कहानी है इसकी।
सही कहा। और दिलचस्प ये है कि स्टेडमैन खुद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी हैं, जहां ये कहानी सेट है, और पहले वो लॉयर थी। शायद इसीलिए कानून, नैतिकता और इंसानी जज्बातों की भी जो कश्मकश होती है।
हाँ वो बारीकी दिखती है उनकी लिखाई में।
बिल्कुल। कहानी का समय है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद का ऑस्ट्रेलिया।
एक ऐसा टाइम जब दुनिया वैसे ही एक दुख से गुजर रही थी।
हाँ, और ये बैकग्राउंड कहानी की जो व्यक्तिगत मुश्किलें हैं उनको और गहरा बना देता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी को समझें, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव और वो जो मुश्किल सवाल ये किताब उठाती है, प्यार, नुकसान, फर्ज, माफी, इन सब पर बात करें।
जरूर। तो कहानी शुरू होती है टॉम शेरबॉर्न से। जैसा आपने कहा, वो वर्ल्ड वॉर वन का सिपाही है, जंग की भयानक चीजें देखकर लौटा है, और अब उसे बस बस शांति चाहिए, अकेलापन। तो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट से काफी दूर, करीब 100 मील दूर, एक द्वीप है जेनिस रॉक, वहां लाइट हाउस कीपर की नौकरी ले लेता है।
एकदम अलग थलग जगह।
हाँ बिल्कुल, जहां बस समंदर है और लाइट हाउस की रोशनी। टॉम को लगता है कि शायद ये अकेलापन उसके अंदर के जख्म भर देगा।
ये बात सोचने वाली है। युद्ध में तो उसे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने थे, है ना? जिम्मेदारी ऊपर वालों की थी।
हाँ
पर जेनिस रॉक पर वो बिल्कुल अकेला है। नियम है हाँ लाइट हाउस के, लॉग बुक के, लेकिन जिंदगी के जो असली इम्तिहान है
वहां फैसले खुद करने हैं।
सही। अकेलापन जो सुकून देता है वो एक ऐसी जगह भी बन जाता है जहां एक गलती, बस एक, सब कुछ बदल सकती है।
बिल्कुल सही। अच्छा, तो जेनस जाने से ठीक पहले मेन लैंड पर एक छोटा सा कस्बा है पाड़खेगस। वहां उसकी मुलाकात होती है इजाबेल ग्रेस मार्क से।
इजाबेल, वो तो टॉम से बिल्कुल अलग है ना?
हाँ एकदम, जिंदा दिल, खुश मिजाज, थोड़ी शरारती भी, उनमें प्यार हो जाता है। वो खतों से बात करते हैं, रिश्ता गहरा होता है और फिर शादी कर लेते हैं।
और इजाबेल भी टॉम के साथ उस वीरान द्वीप पर चली जाती है।
हाँ, और उसका आना जैसे उस बेरंग पथरीली जगह में एक एक रोशनी ले आता है। उनका प्यार वहां और भी गहरा हो जाता है।
और वो द्वीप जेनिस रॉक, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं रहता।
नहीं बिल्कुल नहीं,
वो खुद एक कैरेक्टर बन जाता है। उसका नाम भी तो रोमन देवता जेनिस पर है, जिसके दो चेहरे थे।
हाँ, एक अतीत देखता था, एक भविष्य।
सही। और ये द्वीप भी टॉम और इजाबेल के लिए ऐसा ही है। शुरू में प्यार और सुकून की जगह,
और बाद में उनके राज और दुख का गवाह।
स्टेडमैन ने उस जगह को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप महसूस कर सकते हैं वो लहरें हैं, वो हवा की आवाज।
हाँ, और वो किरदारों के अकेलेपन को और बढ़ा देता है।
तो वो दोनों वहां अपना एक छोटा सा घर बसाते हैं। सपना देखते हैं कि घर बच्चों की आवाजों से गूंजेगा,
लेकिन ऐसा होता नहीं है।
नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। इजाबेल को दो बार मिसकैरेज होता है और तीसरी बार एक स्टिल बॉर्न बेबी होता है, मतलब मृत बच्चा।
ओह, ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, और हर बार वो पहले से ज्यादा टूट जाती है। अब वो द्वीप का सन्नाटा जो कभी अच्छा लगता था
वो अब चुभने लगता होगा।
बिल्कुल।
काटने को दौड़ता है। इजाबेल में मां बनने की जो एक गहरी इच्छा है और वो पूरी नहीं हो पा रही, ये कहानी का एक बहुत बड़ा इमोशनल सेंटर है।
हाँ, और उसका दर्द इतना ज्यादा है कि वो जैसे उसके सोचने के तरीके पर हावी होने लगता है।
सही कहा।
यहां रुकते हैं थोड़ा। इजाबेल का ये दुख ये सिर्फ उसका अपना नहीं है। स्टेटमैन शायद दिखा रही है कि मां बनने की इच्छा कितनी नेचुरल, कितनी गहरी हो सकती है। और जब वो पूरी नहीं होती तो इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। और जैसा आपने कहा, वो द्वीप का अकेला पर
वो उनके दुख को जैसे कई गुना बढ़ा देता है।
हाँ, कोई सहारा नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, बिल्कुल अकेले हैं वो अपने दुख के साथ।
और यही अकेलापन, यही दुख उस मोड़ की तैयारी करता है जो उनकी जिंदगी बदलने वाला है।
हाँ, वो नाव वाला हादसा।
बिल्कुल। 27 अप्रैल 1926, इजाबेल अभी तीसरे बच्चे के दुख से उभर ही रही है कि किनारे पर एक छोटी सी नाव आ लगती है।
और उसमें
उसमें एक आदमी की लाश है और एक जिंदा बच्ची रो रही है।
एक जिंदा बच्ची।
हाँ, एक औरत के कार्डिगन में लिपटी हुई। अब टॉम के लिए, जो हमेशा नियम कायदे मानता है, उसके लिए तो रास्ता साफ है।
क्या?
लॉग बुक में लिखो, मेनलैंड को सिग्नल भेजो, यही नियम है, यही उसका फर्ज है।
लेकिन इजाबेल,
उसका जवाब,
इजाबेल के लिए वो बच्ची, वो जैसे भगवान का भेजा हुआ तोहफा है।
हाँ।
उसके दुख का जवाब।
हाँ,
हाँ बिल्कुल,
अंधेरे में एक रोशनी।
वो टॉम से मिन्नतें करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि किसी को मत बताओ, बच्ची को रखते हैं।
वो क्या तर्क देती है?
वो कहती है कि शायद बच्ची की माँ मर गई हो, अगर बताया तो यह अनाथा ले जाएगी, इससे अच्छा है हम इसे पालें, प्यार दें, ये एक गिफ्ट है, वो कहती है।
और यही कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो जाता है।
हाँ, टॉम जो हमेशा सीधा चला, जिंदगी में पहली बार एक बड़ा, बहुत बड़ा समझौता करता है।
क्यों?
सिर्फ इजाबेल के लिए।
हाँ।
अपनी पत्नी के लिए, उसका प्यार और उसका वो दर्द जो टॉम से देखा नहीं जा रहा। वो उस आदमी को वहीं द्वीप पर दफना देता है, नाव को वापस समंदर में बहा देता है और बच्ची को अपनी बेटी मान लेते हैं।
उसका नाम लूसी रखते हैं।
हाँ, लूसी, वही नाम जो उन्होंने अपनी खोई हुई बेटी के लिए सोचा था।
ये फैसला लिया तो प्यार में गया है, पर क्या प्यार किसी गलत काम को सही ठहरा सकता है?
यही सवाल है, यहीं से सही और गलत की वो जो पतली सी लाइन है वो धुंधली होने लगती है।
ये वो पॉइंट है जहां स्टेडमैन हमसे सवाल पूछती हैं रीडर से, पर जवाब नहीं देती हैं।
क्या
क्या टॉम का ये फैसला सिर्फ इजाबेल के लिए था, या इसमें कहीं ना कहीं युद्ध के बाद अपनी जिम्मेदारियों से बचने की बात भी थी?
ये भी एक एंगल है,
क्योंकि इस फैसले के बाद उसे फिर से बस इजाबेल के नियमों को मानना है, बाहर की दुनिया के नियम पीछे छूट गए।
आपकी बात में दम है। खैर, अगले कुछ साल जेनस रॉक उनके लिए जैसे एक सीक्रेट पैराडाइज बन जाता है। वो लूसी को बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत ज्यादा।
इजाबेल तो जैसे खिल उठती है।
हाँ बिल्कुल, एक परफेक्ट माँ, उसका सारा दुख जैसे धुल गया।
टॉम भी लूसी से बहुत प्यार करता, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अपराध बोध, एक गिल्ट रहता है।
वो चुपता रहता होगा
हमेशा।
ये झूठ उनकी खुशी के नीचे एक टेंशन की तरह हमेशा मौजूद रहता है।
और ये राज उन्हें दुनिया से तो अलग करता ही है, शायद धीरे धीरे एक दूसरे से भी दूर करने लगता है।
बिल्कुल,
कहते हैं ना झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो उनके इस सीक्रेट पैराडाइज में पहली दरार कब पड़ती है?
दरार तब पड़ती है जब टॉम को याद आता है कि उसने सालों पहले जो आदमी दफनाया था उसकी जेब से एक छोटी सी चांदी की खड़खड़ाहट, मतलब रैटल, मिली थी।
अच्छा,
उसने वो रखी हुई थी।
हाँ।
संभाल कर रख ली थी। कई साल बाद जब वो लोग मेन लैंड पार्टीग्यूज जाते हैं तो एक फंक्शन में टॉम को हन्ना पॉट्स की कहानी सुनने को मिलती है।
हन्ना पॉट्स?
हाँ, वो कस्बे के एक अमीर और पावरफुल परिवार की बेटी है। उसका जर्मन पति था फ्रैंक रॉयनफेल्ट और उनकी एक नवजात बेटी थी ग्रेस। वो दोनों ठीक उसी टाइम समंदर में लापता हो गए थे जब टॉम और इजाबेल को लूसी मिली थी।
ओ, तारीखें बिल्कुल मैच करती हैं।
हूबहू।
और यहाँ एक और बात जुड़ती है ना।
हाँ,
फ्रैंक जर्मन था।
हाँ,
और युद्ध के बाद का माहौल, जर्मन्स के लिए नफरत थी।
बिल्कुल, एक शक ये भी है कि शायद कस्बे वालों ने ही उसे भगाया था गुस्से में, जिसके बाद वो नाव लेकर भागा।
ये पता चलने के बाद तो टॉम का गिल्ट
वो एकदम भयानक रूप ले लेता है, असहनीय। अब उसे पता है कि उसकी खुशी की कीमत कौन चुका रहा है, एक जीती जागती औरत हन्ना, उसका दुख, उसका सालों का इंतजार, ये सब टॉम को अंदर तक तोड़ देता है।
अब ये सिर्फ रूल तोड़ने की बात नहीं रही, ये किसी की जिंदगी बर्बाद करने का एहसास है।
हाँ, और ये एहसास उसे इजाबेल से और दूर कर देता है।
क्यों?
क्योंकि इजाबेल इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहती, वो अपनी उस खुशी वाली दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती।
तो टॉम क्या करता है?
वो अपने गिल्ट से इतना परेशान हो जाता है कि कुछ कर बैठता है। वो चुपके से, बिना नाम बताए, वो चांदी की रैटल हन्ना के घर पर छोड़ आता है।
क्या सोचकर?
शायद ये कि हन्ना को यकीन हो जाए कि उसकी बेटी जिंदा थी, या शायद अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए। लेकिन उसे फिर भी चैन नहीं मिलता, तो वो एक और गुमनाम खत भेजता है।
उसमें क्या लिखता है?
बस इतना कि उसकी बेटी सेफ है और उसे बहुत प्यार मिलता है।
अरे बाप रे, ये तो आग से खेलने जैसा है। इजाबेल को पता चलता है।
हाँ, और वो डर जाती है, बहुत गुस्सा होती है। वो इसे टॉम का धोखा मानती है,
विश्वासघात।
हाँ, एक ऐसा कदम जो उनकी दुनिया तबाह कर सकता है। जो राज उन्हें कभी करीब लाया था, अब वही उनके बीच दीवार बन गया है।
और फिर अंत आ ही जाता है।
हाँ, जब वो लूसी के साथ मेनलैंड जाते हैं। लूसी अब 4 साल की है, जेनस लाइट की 20वीं एनिवर्सरी है। वहाँ हन्ना लूसी को देखती है
और वो पहचान लेती है।
उसे बच्ची में अपने पति फ्रैंक की, अपने परिवार की झलक दिखती है। वो रैटल वाला शक तो पहले से था ही। हन्ना के पिता सेप्टेमस पॉट्स बहुत असर वाले आदमी है, वो जांच शुरू करवाते हैं
और सब कुछ जुड़ जाता है।
हाँ, लूसी के जन्म का टाइम, वो रैटल, टॉम का अजीब बर्ताव, सब एक तरफ इशारा करते हैं। पुलिस जेनस रॉक पहुंचती है और उनका वो सीक्रेट वर्ल्ड खत्म।
यही स्टेटमेंट दिखाती हैं कि एकांत में पाला गया झूठ भी आखिर कब तक टिकता है। जैसे ही वो बाहर की दुनिया की सच्चाई से टकराता है, बिखर जाता है उनका वो द्वीप जो उन्हें बचाता था,
वही उनके पकड़े जाने का कारण बनता है।
हाँ, क्योंकि वो सच्चाई से इतने कट गए थे कि खतरा भांप ही नहीं पाए। ये दिखाता है कि आप कर्मों के फल से भाग नहीं सकते।
टॉम गिरफ्तार हो जाता है और यहाँ शायद इजेबेल के लिए अपने प्यार का सबसे बड़ा सबूत देता है। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है।
क्या कहता है?
कहता है कि उसी ने इजेबेल को मजबूर किया था। यहाँ तक कह देता है कि नाव वाले आदमी फ्रैंक को उसी ने मारा है
ताकि इजेबेल बच जाए।
हाँ,
लेकिन इजेबेल क्या वो टॉम के इस बलिदान को समझती है?
शुरुआत में नहीं, वो लूसी को खोने के डर में, अपने दुख में इतनी डूबी है कि वो टॉम के बचाव में कुछ नहीं कहती। पुलिस को टॉम की कहानी पर यकीन करने देती है।
ये भी एक तरह का धोखा है।
हाँ, ये इजेबेल के किरदार की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। वो सेल्फिश भी है, डरी हुई भी।
और बिचारी लूसी, उस बच्ची का क्या?
लूसी, जिसकी दुनिया बस लाइट हाउस, समंदर और टॉम इजेबेल थे, उसे उनसे छीन लिया जाता है और उसकी असली माँ हन्ना को दे दिया जाता है।
लेकिन क्या वो हन्ना को अपनाती है?
बिल्कुल नहीं, वो तो खुद को लूसी शर्बोन ही जानती है। वो हन्ना को माँ मानने से इनकार कर देती है, बस रोती रहती है, टॉम और इजेबेल के लिए तड़पती है।
तो हन्ना के लिए भी ये मिलन खुशी नहीं लाता?
नहीं, उसके लिए ये एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। बेटी मिल तो गई, पर बेटी का प्यार नहीं मिला।
ये हिस्सा पढ़ते हुए वाकई दिल दुखता है। तीनों ही बड़े किरदारों की तकलीफियां चरम पर है।
हाँ, टॉम जेल में, इजेबेल बाहर, पर गिल्ट और अकेलेपन में, और हन्ना, जिसे बेटी मिली पर बेटी उसे अपना नहीं रही।
और फिर वही सवाल, माँ कौन है? जन्म देने वाली या पालने वाली? बच्चे के लिए क्या सही है? कानून क्या हमेशा बच्चे के दिल की बात समझता है?
कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। इजेबेल को बाद में टॉम का लिखा हुआ एक पुराना खत मिलता है।
अच्छा।
हाँ, जो टॉम ने अपनी मौत के बाद खोले जाने के लिए लिखा था, उसमें उसने अपना गिल्ट, अपना प्यार सब लिखा था। वो पढ़कर इजेबेल को एहसास होता है कि टॉम ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है।
फिर वो सच बोलती है।
हाँ, वो हिम्मत जुटाती है, पुलिस के पास जाती है, अपना गुनाह कबूल करती है। इसी बीच जांच में ये भी पता चल जाता है कि फ्रैंक की मौत हार्ट अटैक से हुई थी।
तो टॉम हत्या के इल्जाम से बरी हो जाता है।
हाँ, दोनों को धोखाधड़ी और सच छिपाने के लिए कम सजा मिलती है, लेकिन
लेकिन परिवार तो बिखर चुका है।
हाँ, वो जेनस रॉक वाला स्वर्ग अब नहीं रहा।
कहानी इसके बाद एक लंबी छलांग लेती है।
हाँ,
20 साल की।
हाँ, 20 साल आगे टॉम जेल से छूट चुका है, मेनलैंड पर अकेला रहता है। इजेबेल की कुछ साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसने लूसी ग्रेस, अब उसे इसी नाम से जानते हैं, के लिए एक खत और एक फोटो एल्बम टॉम को दिया था,
इस उम्मीद में कि शायद कभी लूसी तक पहुंचे।
हाँ, और फिर एक दिन टॉम के दरवाजे पर एक जवान औरत आती है,
लूसी ग्रेस।
हाँ, जो अब खुद एक बच्चे की माँ है।
वो क्यों आई है टॉम के पास?
वो उसे शुक्रिया कहने आई है। वो बताती है कि वो अपनी माँ हना से प्यार करती है, हना ने उसे अच्छे से पाला, लेकिन वो जीनस रॉक पर बिताए वो शुरू के साल, वो प्यार कभी भूल नहीं पाई।
वो उस एल्बम को ले लेती है।
हाँ, वो उन यादों को अपनाती है। उसका आना टॉम की जिंदगी में बरसों बाद एक शांति लाता है, एक क्लोजर।
ये उस बात को सही साबित करता है जो टॉम ने कही थी, माफ सिर्फ एक बार करना पड़ता है, पर नाराज रहने के लिए ये हर दिन करना पड़ता है।
बिल्कुल।
यहाँ माफी का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि अतीत की मुश्किल सच्चाई को मानकर उसके बोझ से आजाद होना है। लूसी का आना शायद टॉम के लिए वही माफी है।
हाँ, और अगर हम स्टेडमैन के राइटिंग स्टाइल की बात करें, वो कमाल की है।
भाषा बहुत सुंदर है।
हाँ, पोएटिक है। और जेनिस रॉक का माहौल वो इतने अच्छे से बताती हैं कि लगता है हम वही हैं।
जी,
समुद्र, मौसम, लाइट हाउस, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, ये किरदारों के मन को दिखाते हैं।
और कहानी कहने का तरीका भी ऐसा है कि हम टॉम, इजेबेल, हन्ना तीनों के अंदर झांक पाते हैं।
हाँ, ओमनिशियंट नरेटर, इससे हम किसी एक का पक्ष नहीं लेते, सबकी तकलीफ समझते हैं।
सही कहा। और लाइट हाउस, जो रोशनी का सिंबल होना चाहिए, वो एक अंधेरे राज का गवाह बन जाता है,
विडंबना है।
ये उपन्यास हमें यही दिखाता है कि कैसे प्यार और दर्द जैसे गहरे एहसास हमें ऐसे मोड़ पर ला सकते हैं जहां सही गलत तय करना मुश्किल हो जाता है।
हाँ, ये आम लोगों की कहानी है जो खास हालात में फंस जाते हैं और उनके एक फैसले का असर कितना दूर तक जाता है।
और अंत में शायद कहानी यही कहती है कि माफी ही वो रोशनी है जो गहरे अंधेरों के बाद भी शांति का रास्ता दिखा सकती है,
चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
सचमुच ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ गलतियां कभी माफ नहीं की जा सकती, या माफी की गुंजाइश हमेशा होती है भले ही हम भूल ना पाएं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।